हरे कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 4 वर्स नंबर 2, 3 एंड 4। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। शब्दों का अर्थ देखिए, एवं परंपरा प्राप्तम। एवं माना इस प्रकार, इस प्रकार तो किस प्रकार, जैसे भगवान ने बताया ना, मैंने सूर्य को सुनाया, सूर्य ने मनु को सुनाया, मनु ने इक्ष्वाकु को सुनाया, और इस तरह से परंपरा से। ऐसा नहीं कोई बीच से खड़ा हो जाए जिसको किसी ने नहीं सुनाया हो, वो अपनी तरह से अपनी परंपरा स्टार्ट करे। नहीं, परंपरा वही होनी चाहिए जो कृष्ण से स्टार्ट हुई, इस प्रकार। इसलिए बोला एवं, एवं परंपरा, परंपरा माने गुरु परंपरा से प्राप्तम, प्राप्त ये इमं राजर्षय विदु। इमं माना इस विज्ञान को, कौन सा विज्ञान, ये जो भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दे रहे ना, उसको राजर्षयो विदु। राजर्षयो मतलब पहले राजा जो होते थे ना, उनको बताया जाता। राजा को क्यों बताया जाता था, ताकि प्रजा जो है वो राजा के आदेशों का अनुशीलन करके इस विद्या को ग्रहण एवं उसका अनुसरण कर सके। पहले इसलिए राजा को बताया जाता था, विदु जाना जाता था। सकालीने महता, स माना वही ज्ञान, कालीन अर्थात काल क्रम में, इह इस संसार में, महता महान, योगो नष्ट परंतप। महता का मतलब होता है महान, और योगो नष्ट का मतलब होता है परमेश्वर के साथ अपना संबंध का विज्ञान, यानी योग विद्या। ये जो योग विद्या जो भगवान बता रहे हैं, वो इस तरह पहले परंपरा से दी जाती थी, लेकिन ये विद्या समय के बाद, सकालीनेह मतलब काल क्रम से, थोड़ा समय बहुत ज्यादा बीत जाता है तो क्या होता है, योगो नष्ट नष्ट मतलब छिन्न भिन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोग की बुद्धि अलग होती है ना, तो वो अपनी बुद्धि से विचार करते हैं। अब वो परंपरा से उसको ज्ञान मिलता है, लेकिन अब उसने अपनी बुद्धि से उसको अलग बताया, फिर दूसरे ने उसको और अलग करके बताया, उसको और अलग करके बताया, तो बताया। यहाँ भगवान बोल रहे हैं, योगो नष्ट परंतप, हे शत्रुओं को दमन करने वाले अर्जुन, इस तरह से पहले परंपरा से तो राज ऋषियों को दिया जाता था, लेकिन जैसे समय बीतता जाता जा रहा था, तो ये योग जो है वो नष्ट होता गया, लुप्त होता गया, छुपता गया। अनुवाद देखिए, इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लिप्त हो गया। लगता लिप्त हो, लुप्त हो गया लगता। लुप्त का मतलब होता है छिप गया। इसका मतलब ये नहीं कि वो नष्ट हो गया है बिल्कुल, अब है ही नहीं, लेकिन लुप्त हो गया, छुप जाता है समय के साथ। फिर कोई गुरु आता है तो उसको फिर से प्रकट करता है। और इसीलिए भगवान श्लोक नंबर 8 कहते हैं, मैं सात उच्चारण कीजिए कृपया, स एवायम मयातिथ्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम हि तदुत्तमम्। स एवायम मयातिथ्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम हि तदुत्तमम्। स एवायम मयातिथ्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम हि तदुत्तमम्। स एवायम मयातिथ्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसि मे सखा चेति रहस्यम एतदुत्तमम्। स एवायम मयातिथ्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसि मे सखा चेति रहस्यम एतदुत्तमम्। स एवायम मयातिथ्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसि मे सखा चेति रहस्यम एतदुत्तमम्। स एवायम मयातिथ्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसि मे सखा चेति रहस्यम एतदुत्तमम्। स एवायम मयातिथ्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसि मे सखा चेति रहस्यम एतदुत्तमम्। स एवायम मयातिथ्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसि मे सखा चेति रहस्यम एतदुत्तमम्। शब्द का अर्थ देखिए, स एवायम, स मतलब वही, वही वाला ज्ञान जो पहले दिया गया लेकिन समय के बाद ऐसा लगता है कि वो लुप्त गया है, लुप्त हो गया। स वही वाला एवायम, निश्चय ही मतलब उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं, वो कंप्लीट है, वही वाला अयम, ये मयातिथ्य, मया मना मेरे द्वारा, ते मना तुम से अध्य, यानी आज वापिस से मैं वही वाला ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि समय काल क्रम से काले नहीं हम आतायो, और इस तरह से काल से वो नष्ट हो गया ना, तो आज मैं वापिस आपको ये बता रहा हूँ योग प्रोक्त पुरातन, लेकिन ये योग विद्या जो है वो आज स्टार्ट नहीं हुई है। ये प्रोक्त यानी कही गई पुरातन, अत्यंत प्राचीन है, ये स्टार्ट में ही कही गई थी। और जब से जीव, मतलब जब से जीव ये सृष्टि उत्पन्न हुई है, तब से ही इस योग का मतलब होता है भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ने का तरीका, है ना। योग विज्ञान, ये जो ज्ञान कर्म विज्ञान योग, ये जो ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान के साथ कर्म करो ताकि भगवान के साथ योग कर सको। तो भगवान कहते ये तो शुरू से ही मैंने बताया हुआ है, और मैं आज तुमको वापिस से बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? इसके लिए बता रहे हैं, भक्तों सी में सखा से थी। तो जिसको ये ज्ञान में बताता तो उसके अंदर ये दो क्वालिटीज एटलीस्ट होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये दो क्वालिटीज नहीं होंगे, ये गुण नहीं होंगे ना, तो मैं नहीं बताऊंगा। तो कौन से गुण बता रहे भगवान? भक्तों सी में सखा चेति। भक्त माना जो भगवान को की शरण में होता है। भक्तों सी यानी भक्त हो, मैं यानी मेरे, सखा माना मित्र, सखा माना मित्र। और सखा का मतलब ये भी यहाँ पर दर्शाया जाता है कि उसके साथ मेरा कोई संबंध होना चाहिए। ऐसी मैं किसी को नहीं दे सकता हूँ, वो मेरी शरण में होना चाहिए, और मैं उसका, यदि मुझसे उसने अपना कोई संबंध जोड़ा है तभी। भक्तों सी में सखा चेति। तो ये क्यों ऐसा भगवान ने क्यों कहा है कि ये क्वालिटीज, ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए मेरा, ये ज्ञान, दिव्य ज्ञान हासिल करने के लिए? क्योंकि ये कोई साधारण बात नहीं है, ये कोई है ना सड़क पे खड़े होकर ढिंडोरा पीटने वाली बात नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण संसार का पालन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण प्रकृति को बीज देते हैं और उससे ये सब कुछ होता है। भगवान ही कितना सुंदर अपने विषय में वर्णन कर रहे हैं। तो ये सब भगवान के सीक्रेट्स हैं। तो सीक्रेट्स कोई हर किसी को थोड़ी ना शेयर करता है। सीक्रेट शेयर करने के लिए आपके अंदर प्रेम होना चाहिए। आप अपने प्रेमी को सीक्रेट शेयर करते हो, आप अपने मित्र को करते हो, और जिसके साथ आपका संबंध होता है उससे करते हो। तो भगवान भी कहते हैं रहस्यम, ये सब मेरे रहस्य हैं, ये सब बहुत ही टॉप सीक्रेट बातें हैं। रहस्यम ये तद उत्तमम, और उसके साथ साथ ही माना निश्चय ही, एतद माना यह उत्तमम। और यहाँ पर भगवान उत्तमम शब्द बता रहे हैं, अर्थात ये दिव्य है। ये जो बात में जो ये ज्ञान आपको दे रहा हूँ, ये भौतिक नहीं है, ये स्पिरिचुअल है। तो इसको आपको जान, कोई अगर इसको जानने के लिए इच्छुक है तो उसको स्पिरिचुअल लेवल पे आना पड़ेगा, यानी उसको भगवान की भक्ति का लेवल स्वीकार करना पड़ेगा। और जब भक्त भक्त बनेगा तो फिर भगवान के साथ कोई ना कोई संबंध स्थापित करेगा, फिर ही भगवान उसको ये ज्ञान प्रदान करेंगे। अनुवाद देखिए, भगवान कहते हैं आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अतः तुम इस दिव्य ज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अह श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथ वितन्तं सजीवम्। साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपीक कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरूभयश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। आज भगवान श्री कृष्ण दूसरे श्लोक में यानी चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में हमें गुरु परंपरा के विषय में बता रहे हैं, क्योंकि पहले भगवान ने पहले वाले श्लोक में बताया इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानः अव्ययम्, कि मैंने पहले ये ज्ञान किसको दिया, विवस्वान को दिया। फिर विवस्वान ने क्या किया, विवस्वान मनवे प्राह, विवस्वान ने मनो को बताया और मनो इक्ष्वा कविभी और मनो ने इक्ष्वा को बताया। इस प्रकार से यह परंपरा एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदुः सकालेनेह महता योगो नष्ट परंतप। समय के साथ साथ ये परंपरा नष्ट होगी। आज भगवान श्री कृष्ण गुरु परंपरा की विशेषता के विषय में बता रहे हैं कि गुरु परंपरा कितनी आवश्यक है। इसलिए जब ये नष्ट हो जाती है तो आगे कहेंगे भगवान कि उसको फिर रिफ्रेश करने के लिए मुझे वापस आना पड़ता है। ये परंपरा जो कि मेरे से स्टार्ट हुई है वो बीच में खंडित नहीं होनी चाहिए, सीरीज में मेरे साथ ही होनी चाहिए। और जहाँ पर खंडन हो जाता है तो फिर मैं वापस आता हूँ, किसी भक्त को चुनता हूँ जहाँ से वो परंपरा स्टार्ट हो। एक बार फिर से अनुवाद करेंगे। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया। श्री प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से तात्पर्य समझाएंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राजऋषियों के लिए थी, क्योंकि इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही श्रीमद् भगवत गीता कभी भी असुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते। जो यहाँ पर भी कुछ लोग हैं ना, श्रीमद् भगवद गीता को अपनी सनक के हिसाब से, अपने भौतिक लाभ के अनुसार श्रीमद् भगवद गीता की विवेचना करते हैं और टीकाएं लिखते हैं। यहाँ तक कि श्रीमद् भगवद गीता से गीता को ही निकाल देते। नाम होता है कि भाई हम अभी प्रचार कर रहे हैं भगवद गीता का और उसमें कभी कृष्ण प्रेम के विषय में बात नहीं करते हैं, तो ऐसे जैसे कोई ना कोई भी भौतिक भी चीज कभी कोई बहुत चल गई होती है ना, जैसे फिर उसके नाम से मिलता जुलता कोई नाम ले लेते हैं कि जैसे कोई भी चीज होती तो मिलता जुलता नाम, यानी कि उसके नाम से अगर दूसरी कोई चीज खुलती है या दूसरी कोई फैक्ट्री खुलती है या कोई शॉप खुलती है तो नाम देखकर ही उधर आते, उधर आकर्षण होता है ना, क्योंकि ये तो इतना विख्यात नाम है। तो श्रीमद् भगवद गीता, एक एक बच्चे को पता है कि भाई भगवद गीता, भगवद गीता की क्लास होती है, यहाँ पर भी भगवद गीता के विषय इवन बताते हैं। इधर भगवद गीता जो है ना, कुछ लोग अच्छा ऐसे कहते हैं ना कि भगवद गीता के शुरू के 6 अध्याय कर्म योग पर डिपेंडेंट है और बीच के जो 6 अध्याय वो भक्ति योग से रिलेटेड है और अंतिम जो 6 अध्याय वो ज्ञान योग से रिलेटेड है। लेकिन ये अनुवाद भी पूरा रॉन्ग है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जहाँ कर्म योग है वहां पर केवल कर्म योग ही है, ऐसा नहीं है। शुरू के 6 अध्याय में भगवान ने कर्म योग से प्रारंभ करके भक्ति की पराकाष्ठा बताई है कि कर्म योग करते करते जीव भक्ति योग में कैसे आ सकता है, और अंत के 6 अध्याय में भगवान ने बताया है कि ज्ञान योग पर ज्ञान योग का अनुसरण करते करते भगवान ने बताया सर्वधर्मान परित्यजे माम एकम शरणं व्रज, सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाना। तो ज्ञान योग से भक्ति योग में कैसे आना है, और शुरू में क्या बताया, कर्म योग से भक्ति योग, यानी कि भगवद गीता भक्ति योग की पराकाष्ठा है और बीच की जो अध्याय है उनमें तो भक्ति योगी है, खाली भक्ति योगी बताया। तो जो दूसरे मतलब कुछ लोग इस तरह से विख्यात है इसका, श्रीमद् भगवद गीता का ऐसे विवेचना करते हैं कि उसमें से भक्ति निकाल देते हैं, तो ये उन लोग, उनको तो भगवान ने यहाँ श्री प्रभुपाद ने असुर कहा है कि रास्कल है वो लोग, क्योंकि वो भगवान के साथ प्रेम नहीं करते हैं, भगवान के स्वरूप को स्वीकार नहीं करते हैं, बस भगवान के ज्ञान का नाम लेकर वो अपने अपने जाति सनक के अनुसार प्रचार करते हैं। तो ये उनके लिए नहीं थी, पहले ही कहा एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदु, जो राज ऋषि होते हैं, राजा तो होते हैं मतलब शासन तो करते हैं परंतु वो हृदय से ऋषि उन भाव होता है, आसक्ति नहीं होती अपने राज में भी, ऐसे राजाओं के लिए। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं, विशेषतया अंग्रेजी में, कि उनमें से प्रायः सभी प्रमाणें गुरु परंपरा के अनुसार नहीं हैं। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता के असंख्य टीकाएं की हैं, किंतु वे प्रायः सभी कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चला लेते हैं। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान ने 5000 वर्ष पहले यह मतलब ऐसा रियलाइज किया, भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट रही है, तो भगवान ने स्वयं घोषित किया कि अब वो गुरु परंपरा टूट रही है, इसे मैं उसको वापस से जोड़ने के लिए। और श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं वही स्थिति अब 5000 साल बाद हो गई। तो भगवान कभी स्वयं आते हैं तो कभी अपने भक्तों को भेजते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने उसी परंपरा को जोड़ा और श्री प्रभुपाद जी उसी परंपरा की कड़ी है। आगे बताया कि किंतु वे प्रायः सभी कृष्ण को स्वीकार नहीं करते। अब भगवद गीता को स्वीकार करते, कृष्ण को स्वीकार नहीं करते। मैं जब ऐसे लोग को देखती हूँ तो मुझे इतनी हैरत होती है कि गीता का क्या अस्तित्व, गीता की क्या मायने जब उसमें भगवत न लिखा हो, है ना। भगवत गीता है तभी वो हमारे हमारे है ना अपराधों को नष्ट करती है, हमें भगवान के साथ योग हमारा पुनः स्थापित करती है। लेकिन यदि उसमें से भगवान को निकाल दिया जाए, फिर साधारण गीत वाला क्या हमारा कृष्ण के साथ योग बना सकेगा। तो यहाँ पर भी शिला प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि बहुत सारे अंग्रेजी में भी और अन्य दूसरी दूसरी भाषाओं में भी गीता का बहुत सारा प्रचार हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ व्यापार हो रहा है, उसमें कोई भी परंपरा के अनुसार नहीं है। और कृष्ण को स्वीकार नहीं करते तो सिर्फ और सिर्फ अपना व्यापार चला रहे हैं, यह आसुरी प्रवृत्ति है। क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ लेते हैं। अब देखो वो लोग बोल रहे हैं कृष्ण नहीं है, कृष्ण भगवान नहीं है, या फिर भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, तो ऐसा बोलते हैं, फिर भी वो भगवान की समस्त चीजों को तो स्वीकार कर रहे हैं कि ये भगवान ने बनाया, ये भगवान ने बनाया। अरे बाबा, जब तुम कहते हो कि कृष्ण कोई भगवान है ही नहीं, तो फिर भगवान की बनाई हुई चीजों को कैसे स्वीकार कर रहे हो? हवा से सांस क्यों ले रहे हो? हवा तुमने बनाई है। और ना जो ऐसे जो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहे, सूर्य से प्रकाश क्यों ले रहे हैं? सूर्य तो भगवान ने बनाया। जब आप उसके अस्तित्व को नहीं स्वीकार कर रहे हो तो उसकी बनाई हुई चीजों को यूज कैसे कर रहे हो आप? फिर तो बोल दो कि मैं किसी भी चीज को स्वीकार भी नहीं कर रहा हूँ, जो भगवान की क्रिएशन है उसको भी नहीं स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ये लोग भगवान को नहीं स्वीकार नहीं करते, सिर्फ भगवान के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो परंपरा यानी गुरु परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, पूर्ति के उद्देश्य से किया गया। अब ऐसा हो गया था उस समय 5000 साल पहले भगवान ने दिया, फिर जब श्री रूपा ने बोला कि वही स्थिति हो गई थी कि अब अंग्रेज में भी बहुत आ गए थे, तो फिर ऐसी एक ऐसे संस्कृति यानी एक ऐसा शास्त्र गीता के ऊपर ऐसे टीका बहुत ज्यादा आवश्यक हो गई थी जो कि गुरु परंपरा से प्राप्त हो। और ये जो प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, प्रस्तुत प्रयास ना जो आज आपके हाथ में श्रीमद् भगवद गीता है ना, वो उसी आवश्यकता की पूर्ति है कि क्योंकि खंडन हो गया था तो उसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए श्री प्रभुपाद ने यह प्रयास किया है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, श्री प्रभुपाद जी की असीम कृपा है। अगर ये श्रीमद् भगवद गीता यथारूप हमारे हाथ में ना आता, हम आज श्रीमद् भगवद गीता के विषय को, श्रीमद् भगवद गीता के रियल जो लेसन है उसको, भगवान के जो रियल वाक्य हैं उनको कभी भी नहीं समझ सकते। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारे लिए एक वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय है। इसको एवं परंपरा प्राप्त है यानी जो गुरु शिष्य से जो परंपरा चली आ रही है उसी के अनुसार इसको एज इट इज यानी कृष्ण वाक्य समझकर इसे हमें स्वीकार करना है। लेकिन अगर हम इसको एज इट इज भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा समझकर स्वीकार नहीं करते हैं तो इसको पढ़ना केवल समय का अपव्यय है यानी टाइम वेस्ट होगा। हमें श्रद्धा रखनी है गुरु और कृष्ण में, जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक ज्ञान कभी भी प्राप्त नहीं होगा। भगवान स्वयं कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञान। भगवान ने कब कहा कि जब तुमको संस्कृत आ जाएगी तो ज्ञान प्राप्त होगा? भगवान ने कब कहा कि तुम बहुत सारी भगवद गीता के ऊपर टीकाएं लिखोगे या बहुत सारे शास्त्र पढ़ोगे तब तो भी ज्ञान आएगा? भगवान ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञान, तुम्हारे गुरु के ऊपर और तुम्हारे भगवान के ऊपर तुम्हें पक्की श्रद्धा हो जाएगी ना, फिर तो ज्ञान आ जाएगा स्वयं। किधर से आएगा? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। दिव्य ज्ञान कोई बाहर से लाने की थोड़ी ना कोई वस्तु है, ये तो हृदय में। अब आज जो हम ये प्रयास कर रहे हैं ना शास्त्रों से, वो क्यों कर रहे हैं? फिर वो इसलिए कर रहे हैं कि हम इतने पवित्र हो सके, हमारी श्रद्धा इतनी दृढ़ हो सके कि हृदय इतना पवित्र होगा तभी तो हृदय से प्रकाश होगा ज्ञान का। इसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीत, आपको मेरा भजन करना है अर्थात मेरे शास्त्रों को श्रवण करना है और फिर मेरे पवित्र नाम का जप करना, उसके बाद क्या करूंगा, तेषामेवानुकम पार्थम अहम ज्ञान जमतम नाशयाम्यात्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। 10.11 भगवान ने कहा अगर तुम कंटिन्यूस श्रवण और कीर्तन करोगे ना फिर आगे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं खुद हृदय में बैठा हूँ, हृदय की सफाई भी करूंगा, वहां पर ज्ञान का दीपक प्रज्वलित भी करूंगा, और तुमको करने की कुछ आवश्यकता नहीं है, श्रद्धा रखो, श्रद्धा के साथ श्रवण करो और श्रवण के साथ साथ मेरे नाम का जप करो। आगे भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं स एवायम मया तेथ्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसि मे सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तमम। ये इतना मुझे अच्छा लगता है, जब मैं छोटी थी मुझे कोई भी श्लोक नहीं आता था, तब मुझे ये वाला आता था, ये जो सेकंड लाइन का फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट है ना, भक्तोसि मे सखा चेति, तू मेरा भक्त है तथा मित्र है, इसीलिए ये दिव्य रहस्य तुझे बता रहा हूँ। तो मैं सोचती थी कि अभी मुझे भगवान नहीं बताएंगे, मुझे पहले भगवान की बहुत भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान के पवित्र नाम का जप करना पड़ेगा और उसके बाद बहुत बहुत भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। मैं समझती थी भक्ति का मतलब होता है मंगल आरती करना, संध्या आरती करना और भगवान को प्रसाद खिलाना। तो ये जब भी मैं बहुत बहुत कर लूंगी और भक्त बन जाऊंगी ना, फिर भगवान क्या कहते हैं, भक्तोसि मे सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तमम। तो मुझे भगवत गीता बहुत अच्छी लगती थी, बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी। जब मैं 9 क्लास में थी तब मैंने फर्स्ट टाइम भगवत गीता को सीरियस पढ़ने की कोशिश की थी, समझ में नहीं आया लेकिन अच्छी इतनी लगती थी कि मैं इसको अच्छे से पढ़ना चाहती थी। फिर मैं रोजाना भगवान से इतनी हसरत से देखती थी भगवान को और कहती थी कि अभी मैं भक्त बन गई हूँ, अभी सिखाओगे ना भगवत गीता, अभी बताओगे ना, अभी मैं भगवत भक्त बन गई हूँ। फिर मुझे नहीं पता, मतलब मुझे श्लोक सीखने का भी बहुत शौक होता था, फिर मैं हमेशा ऐसे मतलब प्रश्न के लिए प्रश्न करती हुई आंखों से भगवान से ये प्रश्न करती थी कि कब वो दिन आएगा जब तुम्हें ये लगेगा कि मैं भक्त बन गई हूँ, अब मुझे भगवत गीता बता दोगे। तो जीवन में ऐसे हमें प्रयास करते रहना है, कभी ना कभी वो दिन आएगा जब भगवान हृदय में ज्ञान प्रकाशित करेंगे और उस ज्ञान के बाद तो फिर कुछ भी संसार का भौतिक कुछ अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उसके लिए हमें प्रयास करते रहना, जैसे जैसे हम उन्नत होते जाएंगे वैसे जैसे भगवान यह दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित करते जाएंगे। लेकिन इसका मतलब नहीं है फिर हम शास्त्र पढ़ना ही छोड़ दें कि वो तो फस, लेकिन ऐसे करते करते तो हृदय में पवित्रता आएगी ना। अनुवाद देखिए, भगवान कहते आज मेरे द्वारा वही प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुम से कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। श्रील प्रभुपाद अत्यंत ही सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। इसका मतलब है कि तीसरी कोई श्रेणी है ही नहीं, यानी कि या तो आप भक्त हो भगवान के भक्त, देखो भक्त का मतलब होता है कृष्ण का भक्त, देवताओं के पुजारी हो सकते, देवताओं की भक्ति नहीं की जाती, पूजा की जाती है, और भक्ति केवल भगवान की जाती, भक्त केवल भगवान का कहलाता है। तो उपासक होते हैं देवताओं के, ये भक्त तो केवल कृष्ण के लिए, भक्त का क्या मतलब है, चलो वो बताते हैं श्री रूप गोस्वामी, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य नावृतम अनुकूल है ना कृष्णानु, कृष्णानु खाली कृष्ण के लिए जो अनुकूल हो, अनुकूल है ना देवी देवतानु नहीं है कि वो भी भक्त हो सकते, अनुकूल है ना कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम, कि जो कृष्ण की खाली भक्ति करेंगे और कृष्ण के अनुकूल कार्य करेंगे, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे वो भक्त है। तो जो ऐसे नहीं कर रहे हैं, कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो बाकी सब भले कितना ही कर लें, लेकिन वो यहाँ विष्णु प्रभुपाद ने कहा वो तो असुर है। और भगवान भी आगे बताएंगे कि जो मुझे सरेंडर नहीं करते, वो कौन सा श्लोक है, 7वें अध्याय का 15, उसमें भगवान ने बहुत अच्छा बताया। भगवान कहते नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, कि जो मेरी शरण में नहीं आते ना वो दुष्ट है, मूढ़ है और नरों में अधम है। यानी कि भगवान ने ये ने इसासा कहा है कि बलि और बलि वो कोई भी कार्य करता है उसको आप दुष्ट नहीं कहो, अगर वो मेरी भक्ति कर रहा है तो वो ओके है। भगवान ने कहा ना अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरे व समन्तव्य, लेकिन यहाँ पर एक बताया कि अगर वो मेरी शरण में नहीं आ रहा है तो फिर उस वो दुष्ट है, मूढ़ है और नराधम है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आगे भगवान कहते हैं माया प्रहृत ज्ञान आसुरम भावम आश्रित, माया के द्वारा उसका जो ज्ञान है वो हर लिया गया है और आसुरी प्रकृति ने उसको उसके ऊपर अटैक कर लिया, अब असुर बन गया वो। अब उसके अंदर क्या, भले उसको शास्त्रों का ज्ञान भी हो, है ना, जैसे रावण शास्त्रों का बहुत ज्ञान था उसको, बहुत अच्छा वो शास्त्रों के संस्कृत के श्लोकों को उच्चारण करते थे, लेकिन उसका ज्ञान माया प्रहृत ज्ञान, माया ने उसका ज्ञान हर लिया और वो कभी भी भगवान को सरेंडर नहीं करे, इसलिए वो असुर हो गए। तो जो भगवान को सरेंडर नहीं कर रहे, तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं सिर्फ दो टाइप के लोग होते हैं, मनुष्यों की दो श्रेणियां, या तो भक्त हैं या तो असुर हैं। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना असंभव है। क्यों असंभव, भगवान बता दे 7.25 में नाहम प्रकाशत सर्वस्य योग माया समावित, उसके सामने तो मैं आऊंगा ही नहीं। जो जो है ना असुर होते हैं, जो मेरे भक्त नहीं होते, उनके सामने मैं आऊंगा ही नहीं। अब भगवान को शास्त्र से नहीं समझा जाता है, जब शास्त्र पढ़ के हृदय विमल हो जाता है और भगवान के पवित्र नाम का जप करके और भगवान की भक्ति के द्वारा हृदय पवित्र हो जाता है, फिर भगवान स्वयं अपने आप को प्रकाशित करते हैं। हम क्या समझते हैं, हम भगवत गीता पढ़ के भगवान को समझ सकते हैं? नहीं, भगवत गीता पढ़ के भगवान को नहीं समझा जा सकता, कोई भी शास्त्र पढ़ के भगवान को नहीं समझा जा सकता। वेदेषु दुर्लभ, वेद पढ़ के भी भगवान को नहीं समझा जा सकता, फिर हम कर क्या रहेंगे। ये भगवत गीता और भागवतम साधन है, यानी कि गीता से भगवान के विषय में भगवान की आइडेंटिटी पता चलती है कि भगवान कौन है, और भागवतम से भगवान की कार्यकलाप। तो इन दोनों को पढ़ने से पढ़ने, इसलिए श्री प्रभुपाद जी बोलते गीता और भागवतम का पाठ करो, सुबह को भागवत महापुराण पढ़ो, शाम को भगवत गीता पढ़ो। तो इससे क्या होगा, हृदय इतना पवित्र हो जाएगा, हृदय की दुर्वासना इतनी समाप्त हो जाएंगी कि भगवान स्वयं प्रकट होंगे। जब भगवान प्रकट होंगे तब हम भगवान को जान सकते हैं, बाकी लेकिन है ना, जो भगवान की भक्ति नहीं करे खाली शास्त्र अध्ययन करने से कभी भी भगवान प्रकट नहीं होते, और कभी भगवान अपने आप को उनके सामने प्रकट करते ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य ज्ञान को समझ पाना असंभव है। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध है, इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई हैं, वे वास्तविक हैं, किंतु जो असुरों के द्वारा की गई हैं, वे व्यर्थ हैं। अर्जुन श्री कृष्ण के को भगवान के रूप में मानता है, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा। अब अर्जुन से परंपरा स्टार्ट हो रही है, ठीक है, पहली भगवान कह रहे ना स एवायं वयादेध्य योग प्रोक्त पुरातन। अब ये परंपरा मैं आपसे स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा भगवान ने बताया है वैसा ही अर्जुन प्रथम शिष्य है, तो उसको एज इट समझ में आया होगा। तो वो क्या, अब वो क्या बताते हैं अर्जुन को जब समझ में आया है, यदि ऐसा आपको समझ में आ रहा है तो फिर आप परफेक्ट हो। तो अर्जुन को कैसे समझ में आया, भगवान अर्जुन बताते हैं 10.12 में कि मुझे कैसे समझ में आया। अर्जुन कहते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतं दिव्यं आदिदेवं अजं विभुं। कि आप परम ब्रह्म हो, आप परम धाम हो, आप शाश्वत पुरम हो, पुरुष हो, आदि देवम, समस्त देवताओं के आप आदि हो, आपसे पवित्र, आपसे परम। परम का मतलब होता है आपसे बढ़कर। और अर्जुन तो यहाँ तक कहते हैं न तत् समः, आपके समान कोई नहीं है, तो अधिको कुतोन्य, फिर आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। तो यदि यही चीज आपको समझ में आ रही है, तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है, वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। किंतु असुर भगवान श्री कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते हैं, वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। अब वो तो क्योंकि उनके हृदय में भगवान के लिए प्यार नहीं है, तो वो भगवान के दिव्य ज्ञान को समझ नहीं सकते। श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान नहीं मिलेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और अश्रद्धा, भगवान कहते अब आप अश्रद्धा हो, आपके अंदर श्रद्धा नहीं, तो भगवान 9.3 में बहुत सुंदर बोलते हैं, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्या परंतप प्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार। बोले कितना पढ़ लो, श्रद्धा नहीं है तो बारंबार जन्म लेना पड़ेगा, मृत्यु संसार वर्तमानी। तो और फिर वो क्या करते हैं, पढ़ते हैं और गुमराह करते हैं, दूसरे दूसरे उपदेश अपने मन घड़त बताते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचना चाहिए, इसलिए यह एक चेतावनी है। शरूपाज बोलते हैं इसी भगवान ने बताया कि जो परंपरा से आए हैं, यानी अब अर्जुन की परंपरा चल रही है हमारे साथ, ठीक है। अब अर्जुन की परंपरा में अर्जुन ने क्या कहा भगवान को कि आप ही सब कुछ हो, आप ही मुझे, अब आपकी आदेशानुसार कार्य करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करूंगा, मैंने आपको सरेंडर कर लिया। तो यदि ये भाव आता है किसी में और यही भाव आपको सिखाता है तो वो ठीक है, वरना तो दूसरे को मारे। भगवान से बता रहे हैं कि फिर दूसरों से तो आपको बचना चाहिए, चेतावनी दे रहे हैं भगवान। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद् भगवद गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। जैसा अर्जुन ने इसको समझा, वैसे इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य इन दोनों श्लोकों के ऊपर समाप्त हुआ। इसमें भगवान श्री कृष्ण हमें ज्ञान कैसे प्राप्त हो उसके विषय में परंपरा से बताया। तो भगवान पहले दूसरे श्लोक में बताते हैं कि जो मैंने पहले दिया आज वही परंपरा में, क्योंकि टूट गई है सकाले ने हमहता, क्योंकि समय के साथ साथ वो परंपरा टूट गई है, काल के प्रभाव से धर्म की विधि की परंपरा का खंडन हो गया है। तो परंपरा खंडन क्यों हो जाती है समय के साथ साथ, वो इसलिए हो जाती है क्योंकि लोगों की बुद्धि आध्यात्मिक वस्तु को पकड़ नहीं पाती। अब पहले बुद्धि जो है वो भी भौतिक है और बुद्धि के अंदर भौतिक गुण होते ना, तो उन गुणों के अनुसार जीव के अंदर जो गुण होता है उसी के अनुसार वो आध्यात्मिक ज्ञान को भी लेता है। तो ऐसे करते उसको एज इट समझ में नहीं आता, फिर क्या होता है कि आध्यात्मिक को भी भौतिक समझकर वो उसको उसी तरह से उपयोग करने लगता है और उसमें कहीं ना कहीं अपनी इच्छा को भी डाल देता है। आध्यात्मिक ज्ञान एज इट इज देना होता है, उसमें अपनी इच्छा को सम्मिलित नहीं करना होता है। लेकिन मनुष्य की बुद्धि है वो भौतिक है, तो वो आध्यात्मिक ज्ञान को एज इट इज स्वीकार नहीं समझ सकती है, क्योंकि जब तक भक्त नहीं होंगे तो शुद्ध वैष्णव ही इस चीज को एज इट इज समझ सकते। इसलिए श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें शुद्ध वैष्णवों से हमेशा सीखना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। अब परंपरा कैसे खंडन होती है, जैसे जब चैतन्य महाप्रभु इस संसार में थे आज से लगभग 528 वर्ष पहले, तो बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने सबको कृष्ण प्रेम बांटा, हर किसी को कृष्ण भक्त बना दिया था, कृष्ण भक्ति की महिमा का प्रचार बहुत बहुत फैला था, लाखों लोगों में कृष्ण की भक्ति, लाखों करोड़ लोग कृष्ण की भक्ति, बंगाल में तो कृष्ण की भक्ति इतनी ज्यादा विकसित हो गई थी कि वहां पर सब लोग ने सब लोग चैतन्य महाप्रभु को ही अपना इष्ट समझते थे। चैतन्य महाप्रभु को, हर किसी के घर में चैतन्य महाप्रभु की विग्रह होती थी, वो चैतन्य महाप्रभु। लेकिन यहाँ पर ये भक्ति की विधि तो चल रही थी, वो क्या कर रहे थे, लेकिन जो ज्ञान की परंपरा है ना, वो टूट गई। कैसे हुआ? जब भक्ति विनोद ठाकुर बेंगोल गए तो वहां पर बहुत अभी ये चैतन्य महाप्रभु की है ना, जहाँ पर उन्होंने इतना प्रचार किया वहां उस जगह के बारे में, जब भक्ति विनोद ठाकुर वहां पर गए तो उनको चैतन्य चरितामृत ही नहीं मिल रहा था। अब जो चैतन्य महाप्रभु को इतना मानते हैं और वहीं पर चैतन्य महाप्रभु के का जो प्रथम बहुत सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है उनके विषय में चैतन्य चरितामृत वो मिल नहीं रहा था। हालांकि इस समय सब लोग के घर में चैतन्य महाप्रभु की विग्रह थी, लेकिन उस ज्ञान को इम्पोर्टेंस नहीं थी जो चैतन्य चरितामृत में भगवान ने दिया। फिर मतलब कि वहां पर ना चैतन्य महाप्रभु की विग्रह थी परंतु चैतन्य चरितामृत नहीं मिला, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सकाले ने हमहता योगो नष्ट परंतप। इस प्रकार समय के साथ साथ ये ज्ञान योग है ना, जो ज्ञान की परंपरा वो टूट गई। फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत ना सर्च किया, बहुत ज्यादा ढूंढा, उसके बाद चैतन्य चरितामृत प्राप्त हुई और उसके बाद उन्होंने सबको ज्ञान, उसके अनुसार ज्ञान देना स्वीकार किया। अब वहां पर जो लोग वैष्णव भी खुद को कह रहे थे, क्योंकि ज्ञान खत्म हो गया था, परंपरा टूट गई थी, तो जो वैष्णव कहलाते थे ना, वो भी चार नियम का पालन नहीं करते थे, मांसाहार करते थे, जुआ खेलते थे। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि ये परंपरा टूट गई थी। तो फिर चैतन्य चैतामृत से जब ज्ञान दिया और सबको बताया, क्योंकि वो लोग क्या कहते थे कि नियम नियम फॉलो करना जरूरी नहीं, महाप्रभु का आदेश है, हरि नाम लो, बस हरि नाम लोगे तो सारे अपराध जो है वो नष्ट हो जाएंगे। यानी कि बस इधर तक उनको सारा, परंपरा टूट गई थी ना, तो उनको कुछ और ज्ञान था ही नहीं। लेकिन चैतन्य चरितामृत से जब भक्ति विनोद ठाकुर ने इतना ज्ञान प्रसार किया और उसी के श्लोकों को कोट करके बताया कि भक्ति तो बहुत ज्यादा आवश्यक है, नाम हरिनाम बहुत आवश्यक है, परंतु उससे ज्यादा आवश्यक है सदाचार, नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। तो फिर ये जब उनको बताया तभी उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है कि जब तक हम नियम को पालन नहीं करेंगे, फिर जाके वो परंपरा फिर से जुड़ने लगी। फिर उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर ने विशाल प्रचार किया, उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने तो इतना सिंह की तरह धाड़ते हुए प्रचार किया, बहुत प्रचार करते थे वो, लेकिन फिर वो चले गए और सारा गौड़िया संप्रदाय जो है वो फिर से अज्ञान की लपेट में आ गया और फिर से श्री प्रभुपाद जी को पुनः ये सब स्थापित करना पड़ा। तो ये परंपरा समय समय से टूटती जाती है और फिर भगवान या तो स्वयं आकर या अपने किसी शक्ति आवेश अवतार को भेजकर इस परंपरा को फिर से जोड़ते हैं। इसे भगवान कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालेने हमहता योगो नष्ट परंतप। और फिर अब वो परंपरा में जुड़ने का पात्र कौन होगा, वो भगवान ने थर्ड श्लोक में बताया स एवायम मया तिथ्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसीम सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तम। वही परंपरा को जोड़ने के लिए मैं फिर आया हूँ और तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो, तो ये अद्भुत ज्ञान केवल मेरे भक्त और मित्र को ही समझ में आ सकता है। साधारण जो मुझसे मेरे सरेंडर नहीं होंगे, जो मुझ में श्रद्धा नहीं रखेंगे और जो मुझसे प्रेम नहीं करेंगे, मेरी भक्ति नहीं करेंगे, उनको तो ये समझ में आएगा ही नहीं। तो अभी क्या होता है, जब हम लेक्चर सुन रहे होते हैं तो बीच में कोई ना कोई हमारे हृदय में क्वेश्चन आता है, लेकिन हम लोग तुरंत ही वो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। आहिस्ता थोड़ी देर के बाद क्या होता है, उस क्वेश्चन का उत्तर स्वयं ही आ जाता है, है ना। तो अर्जुन भी जब भगवान ने ये लेक्चर शुरू किया चौथे अध्याय का, तो शुरू में भगवान ने क्या कहा, एमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राहो मानो मनोरीक्षा वा कवि ब्रवीत की सबसे पहले मैंने व्यवसान को दिया, फिर उसने मनु को, उसने तो अर्जुन के मन में ये विचार आया था उसी समय कि ना किसे भगवान ने, किसे अर्जुन ने सोचा भगवान ने सूर्यदेव को कैसे दिया, सूर्यदेव तो बहुत पुराने हैं और कृष्ण तो अभी मेरे साथ खड़े हैं, लेकिन अर्जुन ने पूछा नहीं उस टाइम पर। उन्होंने अर्जुन ने सोचा कि शायद ऐसा होगा कि थोड़ी देर के बाद मुझे रिप्लाई मिलेगा, लेकिन अब क्या देख रहा है अर्जुन कि वो विवस्वान वाला टॉपिक तो समाप्त कर दिया भगवान ने, अब तो वो विषय तो खत्म हो गया, अब तो भगवान मुझे ज्ञान देने की बात कर रहे, भक्तों सी में सखा चेती रहस्य में तो अभी तो मुझे ज्ञान देने की बात आ रही है, तो विषय तो बदल रहा है, तो नहीं अभी क्वेश्चन पूछना है। तो अर्जुन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन पूछते हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।